हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 18 टेक्स्ट नंबर 38। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण एवं श्रवण करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साकृजातं सहकरघुनाथवितं तं सजीवं सत्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकान्ता श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूत देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वंशाकल्पतरु भयस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदी गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय। अष्टदशोध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 38। भगवान श्री कृष्ण आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सुख के विषय में बताना चाह रहे हैं, क्योंकि यह वो सुख है जिसमें संसार के अधिकतर जीव जो है वो गरक रहते हैं, यानी कि रजोगुणी सुख में। क्योंकि सत्वगुणी सुख के लिए भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो मुझे शरण में आते हैं, मेरे शरण में आते हैं, वो तो साधारण होते ही नहीं है, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद उनको ऐसा अवसर मिलता है कि वो सत्वगुण में आकर मेरी सेवा करते हैं। और भगवान कहते हैं ज्ञानवान माम प्रपद वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, जो मेरी शरण में आते हैं, जो सात्विक या शुद्ध सात्विक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो तो महात्मा है, वो तो बहुत दुर्लभ है, स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन फिर अधिकतर जो महात्मा नहीं है, यानी कि जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं या जो सात्विक सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सा सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं? तो अधिकतर लोग जो हैं वो रजोगुणी, अधिकतर मतलब अब संख्या में देखें जाहिर सी बात है तमोगुणी भी बहुत सारे होंगे, लेकिन आधुनिक समाज में जो सभ्य व्यक्ति हैं उनकी अगर बात किया जाए, क्योंकि जो तमोगुणी है वो तो सभ्य व्यक्ति ही नहीं है, वो तो जानवर है, वो तो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो रजोगुणी है वो भी क्या कर रहे हैं, जो एजुकेटेड है, जो सोफेस्टिकेटेड है, वो भी किस तरह से सुख प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं और क्या किस तरह से अपने जीवन का हनन कर रहे हैं, किस तरह से मनुष्य जीवन का सत्यानाश कर रहे हैं, वो भगवान श्री कृष्ण आज हम बता रहे हैं। श्लोक नंबर 38 में भगवान कह रहे हैं, कृपया इन पवित्र शब्दों का मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयत्न कीजिए। भगवान ने कहा, विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदकृमितोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। कैसे? विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदकृमितोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। कैसे? विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदकृमितोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। शब्दों का अर्थ देखिए, विषयेन्द्रिय, विषय मतलब जो विषय है ना, हमारी इंद्रियों के विषय, क्या हमारी इंद्रियां, जो ज्ञान इंद्रियां उनके विषयों की बात कर रहे हैं। ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, त्वचा, रसना, ठीक है। उनके विषय क्या हैं? रूप, रस, स्वाद, गंध, स्पर्श। वो सुख जो विषय इंद्रिय यानी इंद्रियों के विषय तथा इंद्रिय यानी इंद्रिय संयोगात उनको मिलने से, उनको मिलाकर जो सुख प्राप्त होता है, यत तत, वो क्या होता है, कैसा होता है? जैसे आंख ने कुछ देखा उससे आनंद लिया, कान को कुछ सुनाई पड़ा उससे आनंद लिया, जिह्वा ने कुछ खाया, कुछ टेस्ट किया उससे आनंद लिया, और नाक ने कोई सुगंध प्राप्त की उससे आनंद लिया, या हमारे जिस्म ने कोई स्पर्श प्राप्त किया उससे आनंद हासिल हुआ। यह है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यत्तद अग्रे अमृतोपमम्। ये तो शुरू में अमृत के जैसा लगता है कि जो मुझे अच्छा लगता है उसको देखूं, जो मुझे अच्छा लगेगा उससे बात करूं, जो मुझे अच्छा लगता है उसका स्पर्श करूं। तो भगवान ने कहा शुरू शुरू में क्या ये क्या लगेगा, यत्तद अग्रे अमृतोपमम, वो शुरू में आपको अमृत के समान लगेगा, लेकिन भगवान आगे कहते हैं परिणामे, यानी इसका परिणाम क्या होगा, विषम इव, ये तो बिल्कुल विषम, विष के समान, जहर के समान कड़वा इसका परिणाम आपको मिलने वाला है, जो सुख आपका इंद्रिय और उनके विषयों से प्राप्त होने वाला सुख है, वो शुरू में आपको भली अमृत के जैसा लगे लेकिन अंत में वो जहर के जैसा होने वाला है। तत्सुखम राजसम स्मृतम, और ऐसे सुख को राजसी सुख माना जाता है। भगवान ने कहा, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तो आज हम अगर अपने आधुनिक समाज को देखें तो सभी इसी सुख में लगे हुए विषय इंद्रिय संयोगात, जो हमें अच्छा लगता है वही हमारे लिए सुख है, जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है, मेरी कर्म इंद्रियों को स्पर्श को अच्छा, स्पर्श इंद्रिय त्वचा को जो अच्छा लगता है, जो मेरी आंखों को अच्छा लगता है, जो मेरे कानों को अच्छा लगता है, जो मेरी नाक, जो मेरी, जो भी मेरी इंद्रियों को और उनके विषयों को मिलाकर जो सुख प्राप्त होता है, वही सब सब समझते ही सुख उसको है। यानी कि यहाँ तक देख लें कि इसके अतिरिक्त किसी और चीज को सुख माना ही नहीं जा रहा आजकल के समाज में, बस इसी चीज को सुख माना जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर और सीरियस तात्पर्य बता रहे हैं, हम उनको समझने का प्रयास करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई युवक किसी युवती से मिलता है, यानी जब कोई पुरुष किसी फीमेल यानी स्त्री से, यानी एक लड़का एक लड़की से जब मिलते हैं, तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती हैं कि वह उस युवती को देखे। ये एक रियल तत्व है। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह कोई लॉजिक ऐसे नहीं है कि बस ऐसे लिख दिया किताबों में, ये तथ्य है, ये सत्य है। ऐसा ही हो रहा है कि जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है तो वो अंदर से उसको इंद्रियां प्रेरणा दे रही हैं कि उसको उसके उसको देखना है, बहुत अच्छी लग रही है, उसको देखो, फिर उसका आगे मन कर रहा है, उसका स्पर्श करो, उसको स्पर्श करके देखो, क्योंकि अब उसकी पहले उसकी नेत्र इंद्रिय जो है ना, वो उसको प्रेरणा दे रही थी कि आप उसको देखो, उसके बाद उसकी स्पर्श इंद्रिय कह रही है कि उसका स्पर्श करो, और अंतिम उस स्पर्श से उसको आनंद प्राप्त इतना नहीं होता है और वो कहती है कि नहीं, इसके साथ संभोग करो। यहाँ पर यह इंद्रिय सुख जो है वो इसी तरह से डिवेलप होता है। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुखकर लग सकता है, लेकिन अंत में या कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही, अब क्योंकि हम 18वें अध्याय पर आ गए हैं और भगवान हमें सब कुछ क्लियर कर देना चाहते हैं कि संसार में आपको क्या क्या अच्छा लगेगा और किस जो अच्छा लग रहा है ना, उसका क्या परिणाम निकलेगा। क्योंकि भगवान कहते हैं, पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह, तो जो पिता और माता हैं उनकी, उनका ये कर्तव्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को हर चीज क्लियर करके बताएं कि देखो ये चीज होने वाली है तुम्हारे साथ और उसका क्या परिणाम निकलने वाला है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें कितना क्लियर बता रहे हैं। और भगवान ने कहा, यत्तद अग्रे मृतोपमं परिणामे विषमेव, शुरू में आपको अमृत लगेगा लेकिन अंत में वो विष के समान लगेगा। इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रारंभ में इंद्रियों को यह अत्यंत सुख कर लगता है, लेकिन अंत में या कुछ समय के बाद वही विष तुल्य लगता है, तब वे विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक या विवाह विच्छेद हो जाता है। यानी शुरू में उसको देखने की इच्छा हुई, फिर उससे बात करने की इच्छा हुई, फिर उसको स्पर्श करने की इच्छा हुई, फिर उसके साथ संभोग करने की इच्छा हुई, विवाह तक हो गया, लेकिन क्योंकि वह ये जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख जो है वो इटरनल सुख नहीं है, तो उससे जी बढ़ गया, उब गया। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसी का कारण है, तब वह विलग हो जाता है और तलाक हो जाता है, विवाह विच्छेद हो जाता है, फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न होते हैं, फिर दुख। ऐसा सुख सदैव राजसी होता है, जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से प्राप्त होता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको राजसी सुख बोलते हैं। कौन सा? विषय इंद्रिय संयोग यत्तदग्रेमितोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। भगवान श्री कृष्ण पहले कह चुके हैं, रजस्तु फलम दुखम 14.16। भगवान ने बिल्कुल क्लियर शब्द में कहा कि रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। अब यहाँ पर ये हम सुख के विषय में पढ़ रहे हैं, रजोगुणी सुख के विषय में, जिसके जिसके लिए भगवान ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया, रजस्तु फलम दुखम। रजोगुण में क्या, जो सुख आपको इंद्रियों और उसके विषयों के संयोग से मिलता है उसका फल दुख होने वाला। हमको ऐसा लगता है कि ये सुख है, लेकिन उसका परिणाम रे विषमेव, उसका परिणाम विष के समान है, वह सदैव दुख का कारण बनता है। अतएव इसे सभी तरह से बचना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने बोला इससे बचना चाहिए, किससे, इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो सुख प्राप्त हो रहा है उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसका परिणाम जहर के जैसा होने वाला है। तो आज का हमारा विषय है रजोगुणी सुख, वह सुख जो इंद्रियों और उनके विषयों से प्राप्त होता है। तो आधुनिक जगत जिसमें हम रहते हैं उसमें यौन सुख यानी सेक्सुअल प्लेजर को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। इसी सुख को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया जा रहा है, विशेषकर युवा अवस्था जिससे हम गुजरते हैं। जैसे ही ये स्टेज आती है युवावस्था, जवानी की दहलीज पर जब कोई कदम रखता है तो स्वतः ही भौतिक नियमों के अनुसार अपोजिट सेक्स के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ने लगता है। ये वास्तव में अस्वाभाविक है आत्मा की दृष्टि से, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई सेक्स नहीं होता, आत्मा तो आत्मा है। लेकिन क्योंकि वर्तमान में हम भौतिक शरीर से अपने आप को जोड़े हुए हैं, इसलिए ये बहुत स्वाभाविक लगता है। लेकिन क्योंकि श्री प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि जब एक युवक को देखता है तो उससे मिलना, उसको देखना, उससे बात करना, उसको स्पर्श करना और अंततः उसके साथ संभोग करना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात असल में देखा जाए तो केवल युवक और युवती के विषय में ही सत्य नहीं, राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि किसी भी योनि में जाओ तो ये चीज दिखती है। एक कबूतर कबूतरी के लिए परेशान होता है, कॉकरोच भी फीमेल कॉकरोच के लिए, और एक कुत्ता जो होता है वो बिच के लिए जितना परेशान होता है उतना ही मनुष्य, यानी कि ये सेम है। जिस भी योनि में आप जाते हो ये सेक्सुअल जो प्लेजर है वो आप हासिल करने का प्रयत्न करते हो। हम सोचते हैं कि बहुत दिव्य चीज है, बहुत दिव्य आनंद है, लेकिन चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कीड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, वह सब इस आनंद को लेने का प्रयास करते हैं। तो जब मनुष्य जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे ये महसूस होने लगता है कि सेक्सुअल प्लेजर जो है वो इस संसार में सुख हासिल करने का एक रियल सोर्स है। ये इतना वास्तविक लगने लगता है कि मानो हमें ऐसा लगता है हमारे जीवन का यही मकसद है, यही मतलब है, दिस इज द वेरी मीनिंग ऑफ लाइफ। और आज के समाज में इस सेक्सुअल प्लेजर को प्रेम का नाम दिया जाता है और कहा जाता है लव इज लाइफ, प्रेम ही जीवन है। वास्तव में देखा जाए तो ये प्रेम नहीं है, ये काम है, क्योंकि दावा प्रेम का और आरजू जिस्म की, यदि ये प्रेम है तो हवस क्या है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। यदि आपको अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा है तो खबरदार उसको प्रेम मत कहना, वो तो हवस है, वो तो लस्ट है, वो तो काम है। प्रेम का मतलब केवल भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना होता है। लेकिन जो लोग जानते ही नहीं है वास्तविक प्रेम क्या है तो वो काम को ही प्रेम समझते हैं और काम ही प्रेम है। वास्तव में उनको ये कहना चाहिए लस्ट इज लाइफ, लेकिन वो काम को क्योंकि प्रेम समझते हैं इसलिए लस्ट को लव का नाम दे रहे हैं और कहते हैं लव इज लाइफ। हालांकि उनके जीवन का रियल, उनके जीवन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हवस, और वो समझते हैं कि इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं है। यही केंद्र है, आधारभूत है जीवन का। विशेष रूप से आधुनिक समाज में ये जो सेक्स लाइफ है, इसको जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता माना जाता है। वैसे शास्त्रों में ये बताया गया कि यह भी जीव की एक आवश्यकता है, यानी बद अवस्था में जब जीव रहता है तो उसकी चार आवश्यकताएं बताई गई, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। यानी जब वैसे आत्मा को इस चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, ना आहार की ना भय होता है, ना ही उसको किसी और चीज की जरूरत होती है, लेकिन जब बद अवस्था में प्रकृति के अंदर संसर्ग हो जाता है जीव का, तो ये चार चीजें उसको चाहिए होती है। उनमें से एक है काम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, सेक्स, जो ये सेक्सुअल प्लेजर जो है वो एक है उसमें। इस लिहाज से ये एक आवश्यकता है, जैसे खाना खाना, आहार, निद्रा, सोना, भय, बच बचाव करना, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सुख प्राप्त करना। ये तब तक के लिए आपकी आवश्यकता है जब आप बद अवस्था में हो, ये आत्मा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्योंकि हम जब से हमारी स्मरण शक्ति है तब से हम बद अवस्था में, हमें पता ही नहीं है कि मुक्त अवस्था कौन सी होती है, तो इसी को हम स्वाभाविक समझ रहे हैं कि यही जो इस अवस्था में हमको जो महसूस हो रहा है, जो हमको फील हो रहा है, जो हम चाहते हैं, वही हमारी रियल आवश्यकता है। जैसे कोई बच्चा यदि जन्म से ही बीमार हो, बिस्तर पे पड़ा रहे और वहीं पर उसको डॉक्टर ने जो रिकमेंड किया हुआ वही मेडिसिन की तरह खाना और इत्यादि दिया जाए, और उसको कोई आके कहे अगर तुम स्वस्थ हो जाओगे तो तुम्हें ना खेलने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, ये होगा, आप उठ सकोगे, आप दूसरे दूसरे टाइप के चीजें खा सकोगे, तो उसको ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उस जो जब से पैदा हुआ है, जब से उसको देखा है, उसने वही चीज खाया पिया, तो वो इतना हैबिचुअल हो गया है, तो वो समझता है कि यही मेरा स्वभाव है, यही मेरी रियलिटी है, मुझे इसी में खुश होना है। वो स्वस्थ होने की बात की लाइफ को इमेजिन नहीं कर पाता। तो हम भी जन्म जन्मांतर से इस बद अवस्था में है, और जो भी जन्म हमें मिलता है तो हम किसी न किसी स्त्री से, जो स्त्री होती है वो स्त्री से, और पुरुष को पुरुष से आकर्षण होता है। मनुष्य जीवन में स्त्री और पुरुष और दूसरे दूसरे जितनी योनियां हैं, तो जो भी फीमेल काउंटर पार्ट हैं उनमें वो आकर्षण उत्पन्न होता है। शास्त्र में बताया गया है ये वैसे तो आत्मा के लिए स्वाभाविक नहीं है, लेकिन जब बद्धावस्था में होता है तो ये आहार, निद्रा, भय, मैथुन मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, स्वाभाविक अवस्था है, उसको इस चीज की जरूरत होती है। लेकिन आधुनिक सभ्यता में, इस मॉडर्न सोसाइटी में, इस यौन सुख को, जो सेक्सुअल प्लेजर है, उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ग्लैमराइज किया जाता है कि यही सबसे बड़ा सुख है। जीव पोस्टर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जीव कोई जिंदगी नहीं है, कोई जीवन का कोई मकसद ही नहीं है, देयर इज नो लाइफ विदाउट सेक्स। और ऐसा बताया जाता है कि क्योंकि मैथुन सुख वास्तविक है, और इस समझ के साथ उसको इतना बढ़ाया जाता है कि जितना इसको ज्यादा आप इंजॉय करोगे उतना ही आप सुखी रह सकोगे। अंततः हम सब सुखी होना चाहते हैं, तो क्योंकि आधुनिक प्रचार यही होता है कि जितना ज्यादा आप मैथुन सुख को अर्जित करोगे उतना ही सुखी, तो यही कंक्लूजन निकलता है ना कि जितना हम ज्यादा मैथुन सुख करेंगे उतना ही ज्यादा हमें एंजॉय मिलेगा, उतना ही ज्यादा सुख प्राप्त होगा। तो सबकी यही कोशिश होती है कि अधिक से अधिक सुख प्राप्त किया जाए, और इसके लिए इसके बहुत से विकृत रूप भी सामने आते हैं, ना केवल स्त्री पुरुष संबंध बल्कि पुरुष पुरुष और यहाँ तक के पुरुष के साथ जानवर का संबंध भी बताया जाता है। लेकिन ये जो पूरी क्रिया है सेल्फ प्लेजर की, उसमें उतना सर्वे बताता है कि उसमें इतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना कि सोचा जाता है, या जितना कि उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, जितना उसको बखान किया जा रहा है। अधिकतर लोग इस क्रिया में बोर होते हैं और उनको ऐसा लगता है जितना सोचा था उतना सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, और इसके लिए वो ये सोचने लगता है कि सब लोग कह रहे हैं इसमें इतना सुख है लेकिन मुझे तो इतना आनंद नहीं आ रहा, शायद मेरे में कोई प्रॉब्लम है, मैं सही तरह से समझा नहीं कि इसको कैसे सुख लेना है, इसलिए मुझे सही तरह से आनंद नहीं प्राप्त हुआ। वो सोचता है शायद मेरा अप्रोच गलत है, तो वो किसी बुक स्टॉल में जाकर कोई कुछ किताबें रेफर करता है कि हाउ टू इम्प्रूव द सेक्स लाइफ, जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, डॉक्टर गाइड्स टू सेक्स लाइफ इत्यादि। तो सोचते हैं क्योंकि मुझे सही समझ में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से सलाह लेता है या किताबों में पढ़ता है कि शायद कुछ सही तरीका नहीं यूज कर रहा हूँ। लेकिन विडंबना ये है कि जितना अधिक वो इस यौन सुख में परिवर्तित होता है, उतना ही अधिक वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करता है, उतना ही अधिक खुद को खाली या एम्प्टी महसूस करने लगता है, और इसी की वजह से इसके विकृत रूप भी, परिवर्तित रूप भी सामने आते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में यूथ को कोई सही गाइड करने वाला नहीं है कि इसकी वास्तविकता क्या है, क्योंकि जहां तक नजर जाती है एक ही साइड से प्रोपगेट किया जा रहा है कि इसी में आनंद है, इसी में आनंद है, इसी में आनंद। आनंद नहीं आ रहा है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है? कंफ्यूजन, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कि क्यों नहीं मैं वो आनंद हासिल कर पा रहा हूँ। और इस सेक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितना भी ये परफॉर्मेंस है, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। वो जैसे अभी हमारे बच्चे जैसे जवान होते हैं, वो कॉलेज लाइफ में इंटर होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि कॉलेज में इंटर होने के बाद पहला काम उसको क्या करना है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाना है। तो जो हमारे सीनियर वहां पर होंगे ना, वो आके पहले से उसको इनकरेज करेंगे, हाँ भाई कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाया या नहीं बनाया अभी तक? ऐसे बोलेगा नहीं बनाया तो बोला क्या है, कैसे इंसान? तो आजकल के हमारे यूथ के माहौल में अगर कोई लड़का किसी अपोजिट सेक्स फीमेल के अंदर इंटरेस्टेड नहीं ले रहा है, तो उसको ऐसा लगता है उनके फ्रेंड्स को, क्या यार तुम्हारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, जाओ चेकअप कराओ अपना, तुम एबनॉर्मल हो, पागल हो तुम। पूरा माहौल इसी चीज से गियर्ड है, एडवर्टाइजमेंट, सिनेमा, जो इंटरनेट पे हम देखते हैं, और मीडिया, हर चीज हमें इसी चीज की तरफ प्रेरणा दे रही है। तो अगर कोई व्यक्ति यौवन अवस्था में, जवानी के अवस्था में उस चीज में एक्सेसरी इंटर नहीं होता है, इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो भी उससे यही प्रेरणा दी जाती है कि नहीं, यही जीवन है, यही करना है, इसी में मजा है, आप क्यों अपनी लाइफ को खामखा इतना डल बना रहे हो? तो उसको ऐसा लगने लगता है कि जब सब लोग यही कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिस इज द राइट चीज, और मुझे नहीं हो रही है प्रेरणा, तो वो कैसे भी करके अपने आप को इसमें इंटरेस्ट कराता है कि नहीं, जब सारा कुछ इसी तरफ ना जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो सही है, मैं गलत हूँ, तो मुझे इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। और ये ना कहना प्रकार है, लव अफेयर शुरू हो जाते हैं। जैसे कृष्ण प्रभुपाद ने बताया कि पहले उसको देखने का दिल करता है, फिर उसको छूने का दिल करता है, अंततः संभोग करने का। तो ये जो पूरा, ये जो सर्कल है, ये जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत ट्रेजिक है, ट्रेजिकल है। खाली एंड ही ट्रेजिक नहीं होता, वैसे कहते हैं रोमांटिक स्टोरीज का एंड ट्रेजिकल, लेकिन ये तो शुरू से, जिस दिन से प्रेम किया उसी दिन से दूसरे दिन पता चला मैंने उससे प्यार किया, वो किसी और को प्यार करती है। लव मीन्स सो कॉल लव, जैसे जिसको यहाँ पर संसार में लव कहा जाता है, तो फिर उसी दिन से रिजेक्शन के लिए अपने आप को संवेदनशील बना देते कि मुझे रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया, फिर फ्रस्ट्रेट हो गया। इससे बहुत दुख होने लगता है, क्योंकि आप किसी से प्रेम करना चाहो और आपको रिजेक्ट किया जाए तो उससे बहुत पीड़ा, दुख होता है हृदय में कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। वास्तव में प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, ये सिर्फ हवस होती है। लड़के सब सुंदरता की तरफ आकर्षित होते हैं, और ज्यादातर लड़कियां जो होती हैं वो भी या तो सुंदरता या फिर उनकी इनकम की तरफ आकर्षित होती है। और आपने देखा है जिस तरह एक कुत्ता, जैसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं और एक बिच्छ उसके पीछे कैसे भागते, यही होता है कॉलेज लाइफ में भी कि एक अच्छी सुंदर लड़की होगी तो सारे कुत्ते, सारे लड़के जो हैं वो उसकी तरफ, एक्सिस्टेंस फॉर द, उसके लिए इतना उसको मुझे प्राप्त करना है, ये मेरी प्राप्त, खबरदार ये मैंने उसको चॉइस किया है, ये मेरी, इस तरह से वही धारणा जो पहले जन्म में कुत्ते की तरह उसका माइंड था वो आज भी उसी तरह से उसको यूज कर रहा है। प्रेम प्रेम कुछ नहीं होता, कभी कभी तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि खून भी करते हैं एक दूसरे का। इवन लवर भी जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो अपने प्रियतम का खून कर देते हैं, या फिर लड़का लड़की का खून कर देता है और खुद उस बाद में खुद आत्महत्या कर देता है। ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें, कितने लोग का जीवन इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखा गया। अभी तो विवाह नहीं हुआ, अभी उससे पहले की बात हो रही है। और यदि इसका दूसरा पहलू देखें तो कितने लोगों का जीवन इसके इस सेक्स इच्छा से एक्सपोइल किया जाता है, बलात्कार होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इस चीज को इतना ज्यादा दर्शाया गया है, इस चीज को इतनी ज्यादा वैल्यू, इतना ज्यादा ग्लैमराइज किया गया है कि कितनी गंभीर और दुखी अवस्था हो जाती है उसकी, पूरे जीवन उसके मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और एक दुखद छाप उसके जीवन में लगी हुई होती है। बहुत से दुख दुष्परिणाम निकलते हैं इस चीज के, लेकिन फिर भी मन में एक ऐसी आशा है कि नहीं, इसमें कुछ तो सुख है। इसलिए फिर विवाह होता है। और विवाह के बाद भी, जैसे श्री प्रभुपाद ने बोला कि बाद में संबंध स्थापित होते हैं और फिर क्या होता है, डाइवर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। क्यों हो जाता है? ये सब इसीलिए होता है, ये फ्री मिक्सिंग इतना इजीली, इतना आसानी से जो मर्द और औरत के संबंधों को कहा गया। हालांकि ऐसा लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में, सब बताया जाता है, साफ कहा गया है भागवतम के 12वें स्कंद में कि कलयुग में व्यक्ति एक लाइफ पार्टनर से, यानी कि उससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो उसको और अच्छा चाहिए होगा, तो इसीलिए वो क्या होंगे, अक्सर शादियां टूटेंगी, तलाक होंगे, डाइवोर्स होंगे। उसकी वजह भी बताई गई, या तो धन के, धन जिसके पास धन की कमी होगी तो उसके साथ से ना नहीं रहना पसंद करेंगी लड़कियां, और दूसरा या फिर वो इम्पोर्टेंट है उसमें, वो उसकी सेक्स डिजायर्स एक दूसरे की पूरी नहीं कर रहे हैं तो वो है ना तलाक दे देंगे। तो ये पहले से ही ये पता है, शास्त्र बताया जाता है कि ऐसा है। अब शास्त्र में लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमें उसमें प्रेरित होना है, हमें वही कार्य करना है। शास्त्र में लिख दिया तो सावधान करने के लिए कि ऐसा हो सकता है तो बच जाओ उससे, ऐसा अपने आप की जिंदगी को इस तरह से नरक में डालने से बचा लो। और इसके अलावा भी इससे, सेक्सुअल एंजॉयमेंट से बहुत सारी डिजीजेस आती हैं, जिससे हमारा, हमारे जीवन का कितना ह्रास होता है। उसमें है एसटीडी, क्या उसका क्या है फुल फॉर्म, सेक्सुअल इंटरमिटेंट डिजीजेस जो है, और इसमें सबसे कॉमन आजकल है क्या, एड्स। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्सुअल एंजॉयमेंट की वजह से किसी एसटीडी में पड़ गया तो उसका जीवन समझो सिर्फ बर्बाद हो जाएगा। बहुत ही दुखदायक ये बीमारियां होती हैं। उसके लिए चाहे बचने के कितने भी प्रयास क्यों ना किए जाएं, लेकिन डर तो बना रहता है। और हम देखते हैं कि आधुनिक जगत में कितनी संख्या बढ़ रही है इस तरह की डिजीजेस की, और अधिक से अधिक सेक्स जो है वो हमारी बुद्धि को पशुवत बना देता है, जानवरों के जैसा बना देता है। क्योंकि एक सिविलाइज पर्सन जो होता है, एक सोफिस्टिकेटेड जो लोग होते हैं, वो ये सोच सकते हैं ना कि ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। लेकिन जानवरों में ये सारी बुद्धि नहीं होती। इसी तरह से आगे चलते 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 मनुष्य की भी बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है कि वो ये डिफरेंस करना भी छोड़ देता है, सिर्फ सामने वाले को सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की एक साधन समझने लगता है। करेक्ट, वही बहुत सारे जगहों पे ऐसा हो रहा है, क्योंकि फ्रीडम है, फ्री है सब कुछ। यानी कि आधुनिक समाज हमें क्या बना रहा है, सोफिस्टिकेटेड एनिमल बना रहा है, बस टाई लगा के गोवे है और अंदर वही कुत्तों और जानवरों जैसी भावना, इंद्र तृप्ति के इच्छा के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गया। और जो अधिक से अधिक इस सुख में लिप्त होते हैं, उनकी सारी जो अच्छी भावनाएं, जैसे कि हम लोगों ने दैवी गुण पढ़े 16वें अध्याय में, पहले श्लोक, पहले से लेकर 30वें श्लोक में, जो जो हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, क्या बताया, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, तपस्या, वेद अध्ययन, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, ये सब अच्छी गुण जो है वो उसके नाश हो जाते हैं और वो बिल्कुल पशु बनता जाता है। वो किसी चीज में फर्क महसूस नहीं कर पाता, जैसे कुत्ते के सामने जो भी पढ़ा जाता है मुंह कैसे मारता है, उसी तरह से वो भी कहीं पर भी जाके, भले 5-स्टार होटल में भी जाके जो भी सामने रखा जाता है, भले वो सड़ा हुआ कुत्ते का गोश्त क्यों ना वो खा जाता है, पूछता नहीं है कि इसके अंदर क्या डाला है, इस तरह तो इतना उसके सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो रजोगुणी सुख होता है, जो इंद्रिय बोध से और इंद्रिय के विषयों के संयोग से प्राप्त होता है, वो देहात्म बुद्धि को बढ़ावा देता है, क्योंकि मनुष्य ये रियलाइज करने लगता है कि मैं यह शरीर हूँ, यस आई एम दिस बॉडी एंड बॉडी इज हैप्पीनेस इज माय हैप्पीनेस, कि ये इस शरीर को जितना ज्यादा सुखी रखूंगा उतना ही मुझे सुख मिलेगा। तो ये देहात्म बुद्धि बढ़ के हमारी आध्यात्मिक जो आत्म साक्षात्कार है उसको और भी डाउन कर देते। जानवर तो इसी देहात्म बुद्धि में है, एक कुत्ते को यही सोच है, उसको यही पता है कि मैं कुत्ता हूँ, उसको थोड़ी ये पता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो जहाँ भी कोई फीमेल डॉग नजर आया, कोई बिच नजर आई, तो जाहिर सी बात है वो संभोग होना चाहिए। लेकिन मनुष्य को उस जानवर के स्तर से ऊपर आना है। लेकिन अगर कोई बचने का प्रयास नहीं करता है तो शास्त्र कहता है जो काम है, काम को नरक का प्रथम द्वार कहा गया है शास्त्र में। श्रीमद भगवद गीता 16.21 में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशानमात्मनः काम क्रोध तथा। सबसे पहला कहा गया काम, यह जो शास्त्र में लिखा गया है वो कोई भ्रांत नहीं है, कोई धारणा नहीं है, कोई ऐसे ख्याल नहीं है। भगवान ने कहा है कि यदि आप काम में प्रेरित हो जाओगे तो आपको नरक में भेज दिया जाएगा, नरक में, और फिर ये बार बार जन्म लेना पड़ेगा, कभी दूसरा जन्म कभी, क्योंकि इंद्रिय सुख को बहुत बहुत गहरी तरीके से भोगना चाहते हैं ना। तो बहुत वैरायटी है भगवान के पास, कभी कुत्ता बना के, कभी कीड़ा बना के, कभी कॉकरोच बना के, कभी सुअर बना के आपको यह सुख भोगने के लिए प्रेरित किया जाएगा कि भोगो, जितना भोगना है जितना भोग सकते हो भोगो इस इंद्रिय सुख को। अब किसी को यदि ये बताया जाता है तो बोलते हैं किसने देखा है, किसने देखा है क्या मतलब, हर कोई व्यक्ति क्या देखेंगे फिर ही, जैसे सुअर को टेस्ट आ रहा है, उसका विष्ठा खाने में टेस्ट आ रहा है, तो हम उसको बोले, हम आपको बोले नहीं इसमें टेस्ट नहीं है, वो तो सुअर को खाली टेस्ट आ रहा है, तो बोले नहीं सुअर को आ रहा है, मैं टेस्ट करके देखूं तो मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आपको टेस्ट करने का इतना शौक है तो भगवान के पास बहुत वैरायटी है, भगवान के पास कोई कमी नहीं है। भगवान बोलेगा तुम्हें मनुष्य बनकर ये चीज टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, चलो मैं तुम्हें सुअर बना देता हूँ, उधर जाके तुम वो ये टेस्ट करो ताकि तुम्हें बहुत दिल है ना ये चीज का आनंद लेने का। कॉकरोच की तरह सुख, बिल्ली की तरह सुख, कुत्ते की तरह सुख, अमेबे की तरह सुख, हर तरह से सुख आप अनुभव कर सकते हो अलग अलग योनियों में जाकर, जब तक जीना बढ़ जाए। और ये ना कह दो कि कृष्ण मुझे इस चीज में कोई आनंद नहीं आ गया, बहुत बहुत मैं ऊब चुका हूँ इस आनंद से, मुझे रियल आनंद जो सच्चित आनंद घन परमात्मा में है मुझे वह भोगना है, तब तक संसार में ये जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे रहेंगे। क्योंकि आनंद है नहीं इस यौन सुख में, इस महत्वपूर्ण सुख में, वो एक भ्रम है, और भ्रम तो भ्रम ही होता है, उसमें कभी कोई वास्तविकता नहीं होती है। चाहे वो इस जन्म में आप महसूस करने की कोशिश करो, या अगले जन्म में, या किसी भी जन्म में यदि आप उसको महसूस करने का स्ट्रगल करते हो, कोशिश करते हो, तो एंड में आपको यही पता चलता है कि इससे मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ। भगवान ने तो बता दिया, साफ साफ कह दिया, विषयेन्द्रिय संयोग यद्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं। जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों के संसर्ग से सुख प्राप्त होता है वो भले ही शुरू में आपको अमृत जैसा लगने लगे, लेकिन उसका परिणाम जहर के जैसा कड़वा होता है, जहर होता है, तुम्हारे इस जीवन को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक्सपायर कर देगा, और तुम कभी भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर सकोगे। जन्म जन्मांतर के चक्कर में दोबारा से आपको फंसना पड़ेगा। तो फिर हमें ये समझना चाहिए, भगवान जो हमें बता रहे हैं उस चीज को समझ कर हमें इस चीज से बचना चाहिए। जैसे हमारी वैदिक संस्कृति में टोटल चार आश्रम में है ना, कौन से, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। इनमें से तीन आश्रम में तो यौन सुख, सेक्सुअल प्रेजर जीरो, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास में सेक्स अलाउड नहीं है। केवल एक आश्रम, ग्रस्त आश्रम में अलाउड, लेकिन अंडर रिस्ट्रिक्शंस, वेरी स्ट्रिक्ट। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विवाह जो है वो सेक्स लाइसेंस नहीं है, इसलिए विवाह को विवाह यज्ञ कहा जाता है। आजकल की तरह विवाह नहीं है कि जाओ कोर्ट में मैरिज पेपर पे साइन करो और साथ में दूसरे दिन जाओ और डाइवर्स पेपर, इससे दिल भर गया, उससे दिल भर गया, इससे नहीं। विवाह एग्रीमेंट नहीं है सेक्स के लिए कि भाई हाँ ठीक है आप लोग अलाउ हो। लेकिन ये क्या है, शास्त्रों में कैसे बताया गया कि ब्रह्मचर्य के बाद यदि आप अपने को कंप्लीट कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो ये ऐसा है कि साइड में जाके वापस आने का है। गृहस्थ लाइफ को थोड़ी देर के लिए आपको करना है, उसके बाद आपको वापस से वानप्रस्थ में आना है। वास्तविक तुम्हारे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि जाओ और ग्रस्त में ही रहो। ग्रस्त के फौरन बाद वानप्रस्थ का आता है, जाओ आने के लिए, यानी ग्रस्त लाइफ में अंदर घुसो बाहर आने के लिए, ताकि तुम्हें माइंड में ये रह जाए कि ये काम भी करने का है, केवल एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये क्या है। क्योंकि जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस होता है वो केवल सुनने से या पढ़ने ही समझ आता है, सेकंड क्लास इंटेलिजेंस को खुद अनुभव करने की जरूरत पड़ती है। तो जो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस है वो क्या सोचता है कि जब शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कुछ सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं हुआ है इस यौन सुख से, तो फिर मैं उसमें क्यों पढ़ूं, तो ब्रह्मचर्य से डायरेक्ट से वो संन्यास में चले जाते हैं। लेकिन जो सेकंड क्लास इंटेलिजेंस होता है वो सोचता है कि भले पहले नहीं, माजी में या फिर भूतकाल में कोई सुखी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं करके देखूं, सबने प्रयत्न किया, हो सकता है मैं सुखी हो जाऊं। तो उससे यह परमिशन दी जाती है विवाह के द्वारा, चलो ठीक है आप अब ये कर लो एक्सपीरियंस। और फिर जब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वाकई इसमें कोई आनंद नहीं है, तो फिर उसको वापस से अपने लक्ष्य, क्योंकि अल्टीमेटली लक्ष्य नहीं है ये, लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति है, लक्ष्य तो इस जो भौतिक देहात्म बुद्धि है उसको धीरे धीरे जीरो पर लेकर आना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो शरीर की सारी आवश्यकताओं को भी जीरो पर लाना पड़ेगा ना। तो कई बार यह आर्ग्यूमेंट्स किए जाते हैं कि सेक्स लाइफ को जीरो बनाना या मानना ये अननेचुरल है, क्योंकि ये स्वाभाविक है, ये अननेचुरल है, इसको कम नहीं किया जा सकता, इसको जीरो पर तो नहीं लाया जा सकता। थैंक्स टू मिस्टर फ्रॉयड, जो फ्रॉयड जो फिलोसफी हुई है, जो उन्होंने कहा है कि मिस्टर फ्रॉयड क्या कहते हैं कि जो संसार में जो सब विकृतियां, जो गड़बड़ हम देखते हैं वो किस चीज के कारण है, क्योंकि मनुष्य को फ्रीली सेक्स करने की परमिशन नहीं दी जा रही है। साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका कारण क्या है कि लोगों को फ्रीली रिस्ट्रिक्शंस के साथ, रिस्ट्रिक्शंस है बहुत सारी, और फ्रीली सेक्स नहीं करने दिया जा रहा है, इसीलिए सब ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो ये जो फ्रॉयड फिलोसफी को मानने वाले हैं उसके द्वारा संसार में अधिक से अधिक उल्टा हो रहा है, जो वैदिक शास्त्रों में हमारे कहा गया है विषयेन्द्रिय संयोगास्त तत्त, ये जो सुख है जो इंद्रियों के साथ मिल रहा है वो आपको रजोगुण है, वो आपको कभी भी सुख प्रदान करने वाला नहीं है वो चीज, क्योंकि इस चीज का कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। जो इवन हमारे शिक्षक हैं उनको भी ये चीज नहीं पता है कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ वाला सुख जो है वो हमारे दुख का कारण बनता है। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि ये जो सेक्स प्लेजर है, ये जो मैथुन सुख है, उसका उद्गम क्या है, ये आया कहाँ से है, यह संसार में है तो इसकी वजह क्या है, आखिर ये चक्कर क्या है, क्योंकि पूरा जगत तो इसी के पीछे पागल है। कौन नहीं है जो इसके पीछे पागल नहीं है, 99.9% जीव आत्माएं जो भी बद्धावस्था में है, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर हो, वो सब इसी के पीछे पागल है। तो आखिर इसका उद्गम क्या है, ओरिजिन क्या है, इसका उत्तर हमें मिलता है श्री प्रभुपाद द्वारा चैप्टर 3 टेक्स्ट नंबर 37 के तात्पर्य में। भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्धयेन मिह वैरिणम्। भगवान ने कहा इस काम को हमेशा अपना शत्रु मानो, तो जो शत्रु होता है उसको हम हृदय से लगाकर नहीं रखते हैं, उसके साथ नहीं रहना पसंद करते हैं, बल्कि उसको अपने से दूर भगाते हैं। और श्री प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कहते हैं ये काम क्या है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब जीव आत्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में प्रेरित हो जाता है। यानी कि वास्तव में ये काम जो है वो शुद्ध प्रेम है,
शाश्वत कृष्ण प्रेम है जो आपको दिया गया है कि आपके हृदय में जब प्रेम होगा तभी तो आप भगवान से प्रेम। हमारी जीवन की सिद्धि क्या है? सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अब हृदय में यदि प्रेम की कोई भावना ही नहीं होगी तो उस प्रेम को कैसे महसूस करेंगे? लेकिन क्योंकि यह प्रेम जो है वो भौतिक सृष्टि के संपर्क में जब आ जाता है तो उसका शाश्वत कृष्ण रूप कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में, भगवान ने कहा रजोगुण समुद्र, रजोगुण की संगति से काम में प्रेरित हो जाता है। अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। यानी कि दूध वही होता है लेकिन उसमें जब दही या कोई खटास डाल दी जाती है तो वो दही बन जाता है। उसी तरह प्रेम वही होता है जो ईश्वर प्रेम होता है लेकिन क्योंकि उसके अंदर इंटेंशन भौतिक, ये भौतिक देहात्म बुद्धि की आ जाती है तो वो काम में प्रेरित हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी आगे भी बताएं कि और जब काम की तुष्टि नहीं होती है, यानी कि कितने भी भले संसार में कितने भी साधन किए जाएं, काम संतुष्ट नहीं होता है, भले आप उसके कितने ही विकृत रूप से अपने आप को अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की चेष्टा करो लेकिन संतुष्टि संभव ही नहीं है, काम कभी संतुष्ट नहीं होता है। और आगे भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि भड़कती है उसके अंदर ईंधन डालने से उसी प्रकार काम भी भड़कता है, संतुष्ट नहीं होता है तो यह काम क्रोध में परिणत हो जाता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है, फिर गुमराह हो जाते हैं, फिर बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ता है। अतः जीव आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है। प्रभुपाद कितना अच्छा बता रहे हैं। और भगवान ने भी कहा महाशनो महापापमा, सर्वभक्षी पापी दुश्मन है आपका, विद्येनमिह वैरेणम, ये आपका सबसे बड़ा वैरी। क्यों? श्री प्रभुपाद जी आगे बताते हैं ये विशुद्ध जीव आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता रहता है कि जाओ भोग करने का इतना शौक है तो बनो कुत्ता बिल्ली मच्छर कॉकरोच, जाके भोग करके संतुष्ट होके दिखाओ क्योंकि इसमें संतुष्टि है ही नहीं। तो ये हमारा काम जो है वो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है, ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं क्योंकि ये काम जो है वही उसी से सारे आने वाले हैं, जितने भी अपराध हमारे हृदय में आएंगे। क्योंकि अर्जुन का क्वेश्चन यही था कि अपराध क्यों कर रहे हैं, तो इसकी रियल वजह काम ही है। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने दिया जाए, यानी कि क्योंकि काम संतुष्ट नहीं हुआ तो तमोगुण आएगा क्रोध, लेकिन अगर उसको तमोगुण में ना लेकर ये सोच अपने अंदर लाई जाए कि क्योंकि काम संतुष्ट नहीं हो रहा है तो काम का परित्याग करके हम ईश्वर प्रेम में उसको परिवर्तित कर दें तो संतुष्टि होगी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सत्वगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। यानी कि फिर क्या होगा, आध्यात्मिक आसक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि उसको पता है कि काम संतुष्ट करना है, नहीं हो रहा है तो क्रोध हो गया, लेकिन उसको अपने आध्यात्मिक भाव के साथ, उसको अपने सत्वगुण के साथ, उसको आध्यात्मिक उन्नति की तरफ देखना है कि ये चीज से संतुष्ट नहीं हुई मेरी भावना तो मैं कृष्ण प्रेम में उसको प्रेरित कर दूं, फिर सत्वगुण से शुद्ध सत्व में जब चला जाएगा तो संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी वास्तव में भगवत प्रेम का विकृत रूप है। भगवत प्रेम हमारे हृदय में है सबके, लेकिन क्योंकि इस संसार में उसका रूप विकृत हो गया है इसीलिए सबके अंदर काम वासना नजर आती। तो हर जीव के अंदर भगवान का जो प्रेम है वो स्वाभाविक है, आत्मा का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो ये स्वाभाविक है, ये यूनिवर्सल प्रेजेंट है, ये सबके अंदर वर्तमान है, लेकिन क्योंकि अभी विकृत हो गया है, अभी सांसक रजोगुण के अंदर आकर वो बहुत ज्यादा दूषित हो गया है इसलिए काम के रूप में सब में नजर आता है। तो इसीलिए यह मनुष्य जीवन मिला है इस विकृति को, इस गंदगी को साफ करने के लिए, इसको वापस नॉर्मलाइज करने के, काम से प्रेम में आने के लिए, इस विकृति को इस गंदगी को हम वास्तविक में बदल सकते हैं सिर्फ मनुष्य योनि में, जानवर योनि में नहीं। जानवर को ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि आत्मा हो, आत्मा का आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा से प्रेम करना उसका कर्तव्य है, जानवर ये नहीं समझेगा। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि दी है भगवान ने और शास्त्र दिए हैं, तो मनुष्य इस चीज को समझ करके अपने इस काम को प्रेम में परिवर्तित कर सकता है यदि वो चाहे तो। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है तपस्या के, यानी इस जीवन को रजोगुण के संपर्क से काम में परिणत होने के बजाय सत्वगुण के संपर्क से भगवान के प्रेम में परिवर्तित करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिलता है। तो यही कृष्ण प्रेम हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, इसी से हमें आनंद और संतुष्टि और सुख प्राप्त हो सकता है। इसी के लिए हमें अपने जीवन में स्ट्रगल करनी है, ना सिर्फ सीरियस होकर बल्कि हमें बहुत ही सिंसियरली उसके लिए कोशिश करनी है। और उसका तरीका जितने महाप्रभु बताते हैं, श्रवण कीर्तनम जले संचना, ये जो कृष्ण प्रेम का जो बीज हमारे हृदय में डाला है हमारे गुरु महाराज ने, गुरु कृष्ण कृपा पाइए, कृष्ण और गुरु के कृपा से हमें जो यह बीज मिला है कृष्ण प्रेम का, उसको हमें संचित करना है, उसको वृक्ष में बदलना है। और उसको कैसे जल और वातावरण प्रोवाइड करना है, श्रवण और कीर्तन के जरिए से, साधु संघ के जरिए से, क्योंकि जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनके साथ रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, तो यह बीज जो है वो अंकुरित होता है, इसमें से फूल निकलने लगते हैं और हम इतने सुगंधित वातावरण हो जाता है कि वो काम समाप्त हो जाता है और कृष्ण प्रेम की सुगंध जो है वो हर सू फैलने लगती है। ना केवल हम उस प्रेम का अनुभव करते हैं बल्कि हम दूसरों को भी उस प्रेम का अनुभव करा सकते हैं। तो यही हमारी हृदय से प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से कि हमारे हृदय में वह कृष्ण प्रेम का संचालन हो, कृष्ण प्रेम का अनुभव कर सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।